ओम शांति। गीत क्या सुना? समय का महत्व। जो मनुष्य अपने जीवन में समय को बहुत महत्व देता है वो महान बन जाता है, और जो समय की वैल्यू को नहीं समझते वो पीछे चले जाते हैं, लौकिक में भी अलौकिक में भी। स्टूडेंट लाइफ में आपने देखा होगा, कई गुजरे होंगे उन चीजों से जिन्होंने टाइम वेस्ट किया। जो बुरे संग में रहे वो जीवन भर पछताते हैं, काश हम भी पढ़ लिए होते। और जिन्होंने समय को महत्व दिया वो बहुत आगे बढ़ गए। अब बाबा आ गए हैं, हमें इस अनमोल समय का पूरा ज्ञान दे रहे हैं। हम अगले कल्प के लिए अपना भाग्य कैसा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। सभी भाई बहनों को याद रहे, चिंतन करेंगे भट्टी में बहुत अच्छी तरह, बाबा से मुझे क्या क्या लेना है, सब चिंतन करेंगे। पता भी होना चाहिए क्या क्या मिलता है, तब तो सोचेंगे ना इसमें से ये ले लें। बहुतों को पता नहीं है, मुरली सुन ली, थोड़ा बहुत योग लगाया, ओम शांति। क्या क्या मिलता है उससे, क्या क्या देने आ गया है वो, कैसे उसने हमारा भाग्य जगाया है, इसकी बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और एक चिंतन जो मैं हर भट्टी में देता हूं, सबको करना है, मेरे संगम युग के अनमोल क्षण कैसे बीत रहे हैं, चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होने के बाद व्यर्थ में, पर चिंतन में, तेरे मेरे में, उलझनों में, ममत्व और आसक्तियों में जीवन की ये घड़ियां बीती जा रही हैं। देख लें सभी अपने को, क्या कर रहे हैं हम? ये चिंतन मेरा अपना रहा है जीवन भर, आपको वही दे रहा हूं। क्या कर रहे हैं हम इस अनमोल समय पर? ऐसा तो नहीं हम वो कर रहे हैं जो करना ही नहीं चाहिए, जो सारी दुनिया कर रही है, हमें वो करना है जो संसार में कोई नहीं कर रहा। ब्राह्मणों में भी आप स्ट्रांग संकल्प करो, दृढ़ता लाओ, जो कोई ब्राह्मण नहीं कर रहा है वो मुझे करके दिखाना है। बोलो क्या विचार है माताओं का? मुंह तो बंद है सबके, फिर भी थोड़ा सा खोल के उत्तर दे दो, अच्छा विचार है या नहीं, करेंगे? और संगम युग को वरदान है, दृढ़ता पूर्वक कोई भी आत्मा जो कुछ करना चाहे वो होगा ही, क्योंकि बाबा उसके साथ रहता है। एक छोटी सी स्मृति सबको कभी नहीं भूलनी है कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। इसमें बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य है, अगर तुम ये याद रखते हो कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उनकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहती हैं। किसी का योग न भी लगता हो, इस एक चीज को बहुत पक्का कर दो जीवन में, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। नशे से, फीलिंग से, रटने के लिए नहीं, हर परिस्थिति पार हो जाएगी, तूफान समाप्त हो जाएंगे, और ये स्मृति विनाश काल में बहुत मदद करेगी। क्योंकि विनाश काल में बहुतों का योग नहीं लगेगा। कोरोना में बहुतों देख लिया, कोई अच्छे योगी बन गए, कोई छोड़ छाड़ के चले गए। तो बाबा मेरे साथ है। दूसरी बात, सभी को आज और इस भट्टी में गहन चिंतन करना है, अपने संकल्पों को देखना है, हम क्या सोचते हैं। सूक्ष्म दृष्टि होकर, सूक्ष्म दृष्टि रखकर, हमारे सूक्ष्म संकल्पों में भी कौन कौन सी कमजोरी काम करती है, ये बहुतों को पता नहीं चलता। जीवन भर अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को साथ ला रहे हैं, अंत में ही मर्ज हो जाएंगी, बहुत परेशानी पैदा करेंगी। इसलिए बहुत अच्छी तरह चेकिंग की जरूरत है, कौन सी सूक्ष्म कमजोरी मेरा पीछा कर रही है, कहीं वो तो नहीं जो ज्ञान में आने से पहले का जीवन बीता है, उससे जुड़ी हुई कमजोरी बहुतों के साथ हैं। कई बहनें तो कहती हैं, बहुत परेशान रहती हैं, हमने ये क्यों किया, उसे भूलते ही नहीं, भुलाया ही नहीं जाता, उनसे भूलता ही नहीं। हमें इतने नाजुक भी नहीं बनना है कि जो कुछ कर लिया है उसको भुला ना पाए, अब उसको भुलाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि वो कलयुग के प्रभाव में थे सब, भाई हों या बहनें। ये बड़ी सूक्ष्म चीज हो जाती है कि कुछ कर लिया, वो मानस पटल पे इतना छाया हुआ है कि न योग लगने देता, न शांति, न खुशी। हम तो बहुत समझाते हैं भाई, वो पुराना जीवन था, कलयुगी जीवन था, सभी वही कर रहे हैं दुनिया में। अब बाबा के पास आ गए, नया जीवन, नए विचार, सुंदर धारणाएं, सहज जीवन, ये सबको बनाना ही है, सीख कर जाना है यहां से। सरल जीवन, खुशियों भरा जीवन, सुख भरा जीवन हम कैसे जिए। अब ये एक टॉपिक मुझे हर बार दिया जा रहा है, लास्ट सो फास्ट। पहली बात मैं पूछूंगा तो आप सब हाथ उठाएंगे, हम फास्ट जाना चाहते हैं, उसमें तो कोई बात नहीं, हर आत्मा चाहती है। पर क्या हमारे मन में दृढ़ संकल्प है कि हम पीछे आए हैं, कोई तो अव्यक्त बाबा का पाठ पूरा हो गया तभी आए हैं। क्या ये उमंग उठती है कि पीछे आए हैं तो सब कुछ ले लें? ये कभी नहीं सोचना है कि हम पीछे आए हैं तो स्वर्ग में पीछे आएंगे। कई लोग ऐसा भी सोचने लगते हैं, ये सोचने की जरूरत नहीं, इसका कोई कनेक्शन नहीं। कनेक्शन है पुरुषार्थ से, हमने अपनी स्थिति क्या बनाई है। आखिरी एक साल में आने वाली आत्मा भी अगर बहुत तेज पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएगी तो वो भी बहुत आगे निकल जाएगी। इसमें समय की कोई बात नहीं होती, कोई 20 30 40 साल से चलते भी वहां के वहां हैं, कोई 5 साल से चलते हुए भी बहुत आगे निकल गए हैं। तो सभी फास्ट जाने का पावरफुल संकल्प करें, और फास्ट जाने का अर्थ होता है अपने को जल्दी जल्दी परिवर्तन करना, अपने योग को बहुत अच्छा करना, अपनी प्योरिटी को बहुत आगे बढ़ा देना, अपने संस्कारों में ऐसी चेंज लाना जो दूसरों को भी दिखाई दे। विचार करेंगे इन चीजों पे। संस्कारों में चेंज की बात जब हम करते हैं तो उसमें भी यही बात है कि मनुष्य को ये पता होना चाहिए मेरे अंदर कौन सा गलत संस्कार है। किसी के पास सब कुछ ठीक होता है पर चिंतन का संस्कार मेरे पास आते हैं ऐसे लोग, हमारा सब कुछ अच्छा है, हमारा परिवार अच्छा, बच्चे आज्ञाकारी, मेरे लिए सब कुछ खुला अवसर, जो चाहे पुरुषार्थ करूं, जब चाहे सेंटर में जाऊं, लेकिन मेरा परचिंतन बहुत चलता है। देखो एक कमजोरी उसको महान प्राप्तियों से दूर कर रही है। सोचेंगे अपने से, बात करेंगे अपने से, परचिंतन करने से मुझे मिलेगा क्या? जिसके लिए परचिंतन कर रहे हो उसको कुछ फायदा होगा, दोनों को ही नुकसान। परचिंतन करने की ड्यूटी हमारी नहीं है, हमें बाबा ने कुछ महान कार्य दिए हैं वो हमें करना है। अपने अच्छे चिंतन से इस तरह के चिंतन को खत्म कर देना है, नहीं तो क्या हो रहा है, सबको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी है, अच्छी तरह, फिर कह रहा हूं अच्छी तरह। जिनको परचिंतन की आदत है, जिनको अवगुणी दृष्टि की आदत है, जो दूसरों के बारे में ऐसा ही सोचते देखते रहते हैं, उनके मन की स्पीड तेज होती जा रही है। इसलिए मैंने कहा अच्छी तरह सुन लेना, और ये मन की तेज स्पीड उनको मानसिक रोगी बना देगी। इसलिए बाबा के बच्चों में भी ये प्रकोप बढ़ता जा रहा है मानसिक रोगों का, क्योंकि ठीक मार्ग पे नहीं चलते। भगवान कुछ कहता है, करते कुछ हैं, बात थोड़ी सी कड़ी है ये, पर चिंतनीय है और हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब जब भगवान के मार्ग पर आ गए, उसकी मत पर आ गए हैं हम, तो अब सूक्ष्म रूप से ये चिंतन करना है कि हम ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे जिनका कोई मतलब नहीं, जो बहुत छोटी भी हैं लेकिन मन को विचलित कर रही हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आजकल पावरफुल होता जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है, वैसे कई पुरुषार्थियों में गिरावट, उसको देखकर प्रश्न उठता है बहुतों के मन में, ये क्यों? मैं तो हमेशा एक ही संकल्प करता हूं, क्या बाबा के मन में भी क्वेश्चन उठता होगा ये क्यों? कैसे साक्षी है वो, और एक ही लाइन में खत्म कर देता है बात को, जो कल पहले हुआ था वही हो रहा है। इसलिए अपने सूक्ष्म संकल्पों की बहुत अच्छी चेकिंग करेंगे, यहां कोई ऐसी छोटी कमजोरी हमारा पीछा तो नहीं कर रही है? कौन सा मेरा संस्कार है जो मैं तुरंत बदलूं तो परिवार सुखी हो जाए? हम दूसरों को बदलने की सोचते हैं ना, हम बदलें परिवार सुखी हो जाए, घर में शांति हो जाए, मैं अपने संस्कार को बदल दूं तो घर में शांति है। कईयों को क्रोध होता है थोड़ा बहुत, बाबा का बनने के बाद भी हो जाते हैं गरम, सब डर जाते हैं, चुपचाप फिर बोलते हैं, ओम शांति में तो जाते हैं परंतु शांत नहीं हुए अब तक, सेवा होती नहीं, सेवा को रोक दिया। किसी में ज्यादा बोलने की आदत, दूसरों को मौका ही नहीं देते बोलने का, उससे भी सेवा में बाधा पड़ जाती है। तो हम अपनी चेकिंग करेंगे, विशेष समय है अब अपनी प्योरिटी को बहुत ही स्ट्रांग बनाने का। मैं सभी को ये बात याद दिला रहा हूं, बाबा ने कह दिया था, एक ही मुरली चली है वो बाबा की अब तक, जिसके अंदर किसी भी बुराई का, विकार का अंश रह जाएगा, कलयुग के अंत में विकारों की आंधी इतनी तेज चलेगी कि वो प्रज्वलित हो जाएगी अग्नि और उसको नष्ट कर देगी। सो कोरोना काल में बहुतों को हुआ, आपको पता हो या ना पता हो, हमें तो पता है, घरों में रहे सब, इम्प्योरिटी जागृत हो गई, गए ज्ञान छोड़ के चले गए, कितना बड़ा भाग्य मिल रहा था वो छूट गया, क्योंकि प्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया। प्योरिटी के अभ्यास से, प्योरिटी की साधना से जीवन बहुत सुखी हो जाता है। पवित्रता सुख शांति की जननी है, सब जानते हैं। और पवित्रता को बढ़ाने के लिए मैं आपको याद दिला रहा हूं, यहीं से शुरू कर लो, आज से ही कई बार कर जाया करो, क्लास में बैठे बैठे भी कर सकते हो। पांच स्वरूपों का अभ्यास। हमारे पांचों ही स्वरूप बहुत पवित्र हैं। बाबा की एक बहुत पावरफुल मुरली इस पर है। पांच स्वरूपों पर कई मुरलियां चली हैं, कम से कम पांच, लेकिन एक मुरली में बाबा ने याद दिलाया। ऐसे ही योग अभ्यास किया करेंगे सभी, सुन लें। मैं आत्मा अनादि रूप से इतनी पवित्र हूं कि मेरी चमक, जब मैं परमधाम में हूं तो मेरा तेज, मेरी चमक अन्य आत्माओं से बहुत ज्यादा है। इस स्वरूप में जाकर बैठा करें आप वहां। बाकी आत्माएं तो टिमटिमा रही हैं अब कलयुग के अंत में, वहां मेरा तेज इतना ज्यादा है कि उन्हें भी लाइट मिल रही है। बाबा ने कहा जैसे कोई तारे बहुत चमकते हैं, तुम ऐसे चमकते सितारे हो। परमधाम में भी अभ्यास किया करें, यहां संपूर्ण पवित्र हो। वहां सतयुग में पहुंचे तुम्हारा देव स्वरूप, बाबा ने कहा था लाओ सामने, कितने पवित्र हो तुम, कितने निर्विकारी हो। मैं ऐसा था ऐसी थी, ये संकल्प करेंगे प्योरिटी बढ़ेगी। ऐसे ही पांचों स्वरूप, इस देव देवियां, इस देवियों को देखो। आपकी मूर्तियों के सामने जाते ही सबके चित्त निर्मल हो जाते हैं। पवित्रता का बल है, इस बल के कारण ही देवियां सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज सबको लानी है अपने जीवन में, उसको दबा कर नहीं रखेंगे, उसको परिवर्तन करेंगे, वासनाओं को परिवर्तन करेंगे। दबी हुई चीज फिर से उछल जाती है, इसलिए पांच स्वरूपों का अभ्यास। और तेज पुरुषार्थ जिनको करना है फास्ट जाने के लिए, चार घंटे योग कम से कम रोज होना ही चाहिए। ये बात मैं हर बार कह देता हूं क्योंकि बहुतों को भूल जाती है। बैठ कर नहीं, बैठो जितना आप बैठ सकते हैं, एक घंटा, दो घंटा, डेढ़ घंटा, बाकी योग कर्मों में होना चाहिए। कर्म योगी बने बिना कोई आत्मा योगी नहीं बन सकती। हम तो साक्षी होके देखते रहे, कई कुमार जिनको बहुत अच्छी लगन होती थी, अच्छा योग में बैठते थे, बहुत लगन होती थी उन्हें और बहुत बहुत ऊंचा लक्ष्य होता था, बिल्कुल सत्य है, उन्हें देखकर सब खुश होते थे, परंतु ज्यादा दिन नहीं चल पाया। और जो बैठते तो थे लेकिन कर्म योग का अभ्यास करते थे, वो आगे निकल गए, योग युक्त जीवन बन गया। तो बैठना तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि घर वाले ही परेशान हो जाएं, इन्होंने तो कामकाज सब छोड़ दिया है, आपको कहने लगे वहीं चले जाओ, घर में क्यों रहते हो। एक बैलेंस की बहुत जरूरत होती है जीवन में। योग का सबसे अच्छा तरीका है, बैठ के तो आप योग करेंगे, उसके लिए मैं एक छोटा सा लक्ष्य देता आ रहा हूं कोरोना काल से कि 10-10 मिनट बैठकर योग करो चार बार। उससे बुद्धि की एकाग्रता बढ़ेगी, योग में रस बढ़ेगा। बहुतों को योग में रस नहीं होता इसलिए बैठते ही नहीं है। अमृत वेले भी क्या करेंगे, बैठ के नींद आएगी, संकल्प इधर उधर भागेंगे, छोड़ो सो जाओ। रस आए सारे दिन में आप करके देखो चार बार 10-10 मिनट, क्या आनंद आता है आपको। बहुत अच्छा योग हो जाएगा और योग करने को मन करेगा। मैं आपको एक विधि बता रहा हूं, सवेरे तो सब आते ही होंगे योग में, हम अलग अलग ड्रिल कराते हैं, पर आप अपने घरों में ऐसे कर सकते हैं। पहले मैं आत्मा हूं ये अभ्यास, फिर मैं फरिश्ता हूं ये अभ्यास, फिर मैं फरिश्ता उड़कर गया सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने, जो रोज सवेरे करते हैं, बाबा का हाथ सिर पर, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, वरदान देते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर वहीं छोड़कर मैं आत्मा गई परम धाम, बाबा ऊपर है या सामने है, कुछ देर उसकी किरणों में, फिर मैं आत्मा अवतरित हो गई देह में। 3 मिनट में कर जाओ तीनों लोकों की सैर, 3 मिनट से शुरू करो। हम तो सवेरे ज्यादा कराते हैं, पर 3-3 मिनट से करेंगे। फिर मैं फरिश्ता हूं, मेरे चारों ओर प्रभा मंडल है, अब थोड़ा बढ़ा दो इस चिंतन को। फिर मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में पहुंचा, बाबा से रूरिहान करें, कोई मन पर बोझ हो उसे दे दे, फिर वहां से मैं आत्मा बनकर परम धाम में, कभी शांति किरण लेंगे, कभी शक्तियों की, कभी पवित्रता की, भिन्न भिन्न नातों से उससे जुड़ेंगे, फिर मैं आत्मा वापिस अवतरित हो गई। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल, कभी बाबा ने सिखाई थी। जिनको योग में रुचि नहीं होती अगर वो ये अभ्यास कर ले 3 दिन पर 10-10 मिनट 4 बार, 3 दिन में ही उड़ती कला का अनुभव होगा, कहेंगे योग बहुत अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा, फिर आपका आप बैठना आप ही बढ़ जाएगा। कर्म योग के लिए एक सिंपल परिभाषा, योग अर्थात स्मृति स्वरूप होना। आप लिस्ट बना सकते हैं, टीचर बहने भी अपनी क्लास में चिंतन करा सकती हैं, बाबा ने हमें कौन कौन सी स्मृतियां दिलाई हैं। आते ही स्मृति दिलानी शुरू की, कुछ ऐसी स्मृतियां हैं जिनका शास्त्रों में, पुराणों में, दर्शनों में कहीं जिक्र ही नहीं था, इसलिए वो छूटी हुई थी पीछे। बाबा ने आत्मा की स्मृति तो दिलाई ही, फिर कहा तुम आत्माएं, 5000 साल की यात्रा पूरी करके अब अंत में हो, पूरी हो रही है, अब तुम्हें घर चलना है। और आप देखेंगे मुरलियों में ये स्मृतियां बाबा बार बार दिलाते रहते हैं, हम नोट भी कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन हमें लाना है इसको प्रैक्टिस में। कैसे? मैं आत्मा कभी परम धाम में थी, नीचे उतरी देव स्वरूप में, एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, वो छोड़ा तीसरा, वो छोड़ा चौथा, पुनर्जन्म लेते लेते अब इस देह में हूं, अब बाबा के साथ चलेंगे ऊपर। गहरे चिंतन में और अनुभूति में ले आओ, अनुभूति का अर्थ होता है उस स्वरूप को बुद्धि के नेत्र से देखना, विजुअलाइजेशन। आप 2 बार कर लो ये चीज और देखो इसका इफेक्ट जीवन पर, एक बार भी करने से बहुत सुंदर होगा। चलना है, 5000 साल की यात्रा इस तरह पूरी की, चलो अब योग में कर लो इसको। पसंद है ये अभ्यास? साकार मुरली में एक दिन आया, ये अभ्यास रात को सोते समय किया करो, नींद बहुत अच्छी आएगी, हो सकता है बाबा आपको साक्षात्कार कराए। तब से मुझे तो जब भी सोने जाता हूं ये याद आ जाता है, देह बदलते आए हम, मैं इससे न्यारी, हमें अपनी इस फीलिंग को बढ़ानी है, मैं इस देह से न्यारी हूं। देह से न्यारापन बढ़ता जाएगा, अनेक सुंदर अनुभव रहेंगे, मन की गति धीमी होगी, कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, अनेक आसक्तियां, अनेक दुनियावी रस समाप्त होंगे, क्योंकि ये आत्माभिमानी होने का रस सुख सबसे बड़ा है संसार में। इस पे ध्यान देंगे, अपनी अपनी स्मृतियां चुन लेंगे आप सभी, मैं कुछ बता रहा हूं उसमें से कोई भी 5 चुन लेना। करना तो सबका अभ्यास है, क्योंकि जो कुछ बाबा हमें याद दिलाता है, और यदि वो हमें याद आ जाए, यदि हमें उसका नशा चढ़ने लगे, तो वो संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं। स्मृति दिलाई है उन्होंने, तुम देवी देवता थे, संपूर्ण निर्विकारी, तुम कितने महान थे, विश्व के मालिक, कितनी धन संपदा थी तुम्हारे पास, एक बार ले आया करें उस स्वरूप को। हम देव कुल की पवित्र महान आत्मा हैं। वो संस्कार इस जीवन में आने लगेंगे, एक एक संस्कार को चेक करके बदलने की जरूरत ही नहीं है। देव संस्कार, देवताओं का छुपा हुआ देवत्व हमारे जीवन में समाने लगेगा। याद दिलाया, मैं इसकी प्रैक्टिस माताओं से आजकल बहुत करा रहा हूं, घरों की समस्याएं समाप्त होने के लिए, पति के साथ पाने के लिए, सब सहयोगी बन जाएं इसके लिए, आपके घर में पवित्र वाइब्रेशंस हो जाएं इसके लिए। मैं वही हूं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, अब मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। आप करके देखो, रटने की बात नहीं, इनको दिन में 5-7 बार ये अच्छी फीलिंग हो जाए। एक एक भी ले सकते हैं आप स्मृतियां, 2-3 भी ले सकते हैं, बदलते रहें तो न्यूनेस रहेगी, नयापन रहेगा और अच्छी अनुभूतियां होंगी। तो मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। हैं सभी इष्ट देवियां, हाथ उठाओ इष्ट देवियां। करना ये अभ्यास और देखना इसका चमत्कार, जबरदस्त अनुभव देगा ये अभ्यास। आपको कानों से सुनने को मिलेगा, कईयों से, आपका घर तो मंदिर लगता है, आप तो देवी लगती हैं। 6 मास कर लो अच्छी तरह और ये सुनेंगे आप, क्योंकि जिस स्मृति में हम रहते हैं वही हमारा स्वरूप बनता है। स्वरूप को शायद कई लोग समझते नहीं, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है, वैसा ही हमारे चेहरों पर हाव भाव आ जाते हैं, इसको स्वरूप कहते हैं। मैं इसके लिए छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं, एक ही काफी है। वो आपके जीवन में कभी बहुत बड़ी दुख भरी घटना हुई हो, अचानक आपको याद आ जाए, वो 20 साल पहले हुई थी, याद आ गया, तो क्या होगा? दुखी हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, ये हुआ। इसको कहते हैं स्वरूप होना। स्मृति आ जाए किसी सुंदर घटना की, जिससे आपको बहुत खुशी मिली थी, मन आनंदित हुआ था, तो फिर से आनंदित हो जाएंगे। इसको कहते हैं स्मृति से स्वरूप बन गया। क्लियर है ना? अच्छी अच्छी स्मृति ले लो, पवित्रता बढ़ानी है। मैंने 5 स्वरूप कहे, उसमें लास्ट स्वरूप है, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। सबको बढ़ानी है, हम अच्छी तरह जानते हैं प्योरिटी बहुत स्ट्रांग सबकी नहीं होती, इसको ऐसा नेचुरल बनाना है कि पवित्र स्वरूप हमारा है ही, बस बाकी स्वरूप हमारे हैं ही नहीं। स्मृतियों से पानी पियो, 2 बार याद कर लेना, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। पानी में पवित्र वाइब्रेशंस भर जाएंगे। हमें ये साधनाएं करनी हैं। बाबा ने हमें याद दिलाया, तुम साधारण नहीं हो, इस संसार की महान आत्माएं हो। उसने हमें याद दिलाया, 2 बहुत बड़ी स्मृतियां दिलाई हैं, बहुत बड़ी हैं वो। तुम सृष्टि के आधार हो, हमें थोड़ा ही पता था, हम तो अपने में जी रहे थे। सृष्टि के आधार, तुम्हारे एक एक संकल्प से सृष्टि बदलती है, अच्छी या बुरी। तुम्हारा एक एक संकल्प सृष्टि तक पहुंचता है, तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो और तुम उद्धार करता हो। वो जो शब्द है ना, उद्धार मूर्त हो, कई इस मूर्त को समझते नहीं, भूल जाते हैं। उद्धार करता हो, तुम्हें इस सब का उद्धार करना है, बहुत बड़ा काम है ये। भगवान को हम कहते हैं तुम गति सदगति दाता हो, उसने हमें भी यही काम दे दिया। तुम भी सबको गति सदगति देने वाले हो, सबका उद्धार करने वाले हो। अनेक आत्माएं जो भटक रही हैं, कोरोना काल में तो करोड़ों भटक गई हैं, और भटकती आत्माओं की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है, ये बाबा ने बहुत पहले क्लियर कर दिया था। अभी मुरली में आया है, एक दो संडे पहले, जो तमोगुणी भटकती हुई आत्माएं हैं, उस स्थिति में उनको बहुत कड़ी सजाएं मिलती हैं। याद हो आपको, बाबा ने कहा पिछले संडे या उससे पहले, मैं आत्माओं को सूक्ष्म शरीर धारण कराकर फिर सजा दिलवाऊंगा। सूक्ष्म शरीर उनका, वो तमो प्रधान आत्माओं का काला पीला होता है। वो शरीर तो आत्मा लेती है, देह छोड़ती है तो उसी शरीर में रहती है, आकाश में विचरण करती है, थकी हारी, परेशान, चिंताओं में उदास, प्यासी, भूखी, कुछ समझ में नहीं आता उसकी, अति 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 सजाएं हैं वो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है इसलिए सब कुछ फील होता है, याद भी आता है, मैंने ये बुरे कर्म किए हैं, ये सजाएं मिल रही हैं। इसलिए बहुत बड़ा काम हम सबको करना है, इन सभी आत्माओं का उद्धार करना। इनको बुलाना नहीं है, आह्वान नहीं करना है। योगी ऐसा बनना है कि हमारे वाइब्रेशन से इन आत्माओं की गति होने लगे, इनके चित्त शांत हो जाएं, ये कुछ सत्य को पहचान लें, क्योंकि जो आत्माएं अंत में शरीर छोड़ेंगी, अब विचार करो, एटम बम चलेंगे, करोड़ों करोड़ों अरबों आत्माएं एक साथ भटक जाएंगी, घर नहीं जा सकेंगे, उस सूक्ष्म शरीर में उनको सजाएं मिलेंगी, सजाएं पूरी होंगी, हल्की होंगी आत्माएं, पवित्र होंगी, फिर उड़ेंगी घर की ओर। उसमें हम सभी को, उन आत्माओं को बहुत बड़ा योगदान देना है, बहुत बड़ा काम है ये। इसलिए जो सर्व प्राप्तियों से भरपूर हैं, वही विश्व की ये महान सेवा करेंगे। केवल ज्ञानी नहीं, सर्व खजानों से भरपूर आत्माएं। तो अपनी अपनी स्मृतियां चुन लेना, मैं शिव की शक्ति हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, विजयी रत्न हूं, इस माया को मैंने हर कल्प जीता है। नशा बढ़ाओ जरा, देखो माया कैसे जीती जाती है, आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूं, माया जीत हूं, इस माया को मैंने हर कल्प में जीता है। ले आओ इसको अपनी गुड फीलिंग में और देखो परिणाम, माया पर विजय होगी, लगेगा इस माया से पावरफुल तो हम हैं। ये बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई, याद दिलाया, हम भूले बैठे थे। मुझे एक घटना याद आती है, कहानी है वो, पर है सत्य, कि पार्वती को राक्षस उठाकर ले गए। राक्षसों के महल में पार्वती उदास बैठी दिखाई गई है। अब महादेव के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय कह रहे हैं उनको कि आप हमें आज्ञा दो, हम उनसे युद्ध करके मां को छुड़ा कर लाएंगे। महादेव जी कहते हैं नहीं, पार्वती को स्मृति आ रही है, तेजी से स्मृति आ रही है, मैं कौन हूं, मेरी शक्तियां क्या हैं, वो उन सबको मार के खुद ही छूट के आएगी। ये बाबा के कार्यों की एक सूक्ष्मता भी है, कि बाबा हमें माया से छुड़ा दे फट से, इससे हमारा भला नहीं होगा, वो तो छुड़ा सकता है। पर हम स्मृति स्वरूप होकर विजयी बनेंगे तो माया से अधिक पावरफुल हो जाएंगे। पावरफुल बनाना चाहता है बाबा हमें, केवल खुद मदद करके हमारी समस्याओं को हल नहीं करना चाहता है, छोड़ देता है हमें युद्ध के मैदान में। मैं साथ हूं पर युद्ध तुम्हें करना है, है या नहीं ऐसे ही? इसलिए स्मृति चुन लेना पांच पांच कम से कम, आप अपना मार्ग खुद बनाना। एक स्मृति भी रोज ले सकते हैं कि मुझे इस स्मृति को आज 10 बार 20 बार लाना है अपने अंदर। एक दिन में 2-3 भी ले सकते हैं, अमृत वेले इस नशे में रहेंगे, दोपहर तक इसमें रहेंगे, शाम को इसमें रहेंगे, तो अपना एक प्रोग्राम पुरुषार्थ का स्वयं सेट करना। क्योंकि पुरुषार्थ की ये सूक्ष्म गति होती है, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दूं, आप 2 दिन कर पाएंगे, 3रे दिन नहीं। क्यों? हर एक आत्मा का अपना है सब कुछ, अपना चिंतन, अपनी विधि, ब्रेन की पावर अपनी, बुद्धि की पावर अपनी, संस्कार अपने। इसलिए अपना मार्ग खुद बनाना चाहिए, सबसे सुंदर बात है ये। अपना मार्ग खुद बनाओ, अपनी उन्नति का मार्ग खुद तय करो, मुझे ये कर लेना है। बहुत सारी बातें आपको और क्लासेज में मिलती रहेंगी, उन सब को सुनते हुए अपना एक 5 पॉइंट 5 पॉइंट का प्रोग्राम बनाकर जाना है। यहां से हम 1 साल 2 साल 3 साल ये अभ्यास करेंगे। और अच्छा तरीका होता है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, 15 दिन में मैं ये करूंगा ये करूंगी। अब 15 दिन परचिंतन से मुक्त रहकर दिखाएंगे बाबा को, अब 15 दिन संतुष्ट मनी बनकर रहूंगी, अब 15 दिन मेरी दृष्टि केवल आत्मा पर जाएगी, शरीर पर नहीं, अब 15 दिन मैं ईश्वरीय नशे में रहूंगी, नशे ले लो। तो 15-15 दिन की अगर आप प्लानिंग करेंगे तो सदा उमंग उत्साह रहेगा और पुरुषार्थ में कभी बोरियत नहीं आएगी और आगे बढ़ते जाएंगे।